Kasir. अब आप देखिए कि सूरत अल कसस आयत नंबर 22 में हजरत मूसा अलैहि सलाम का वाकया जारी है, और मूसा अलैहि सलाम का ये किस्सा वाकया जो है ये आयत नंबर 1 से शुरू हुआ। आयत नंबर 1 से लेकर 43 तक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है, विलादत से तौरात के अता किए जाने तक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मक्की दौर में जो है ये सूरत नाजिल हुई, और उस जमाने में अहले मक्का की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर इतराजात किए जा रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले मक्का ईमान नहीं ला रहे थे, मोजजात का मुतालबा कर रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरह मूसा अलैहि सलाम को मोजजे दिए गए, आपको इसी तरह मोजजे क्यों ना दिए गए। तो यहां पर जो है वो मूसा अलैहि सलाम का वाकया बयान किया गया है कि जब उनको मोजजे दिए गए थे तो क्या उनकी कौम उन पर ईमान ले आई थी। फिर आप देखें कि आपने पिछले सबक में पढ़ा था कि कैसे जो है वो आपने पिछले सबक में पढ़ा था कि कितने मुश्किल हालात में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए जब फिरौन बनी इसराइल पर जुल्म ढा रहा था और बेटों को कत्ल करता था और बेटियों को जिंदा रहने देता था। तो इनकी माँ ने, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो टोकरी में डालकर समंदर में फेंक दिया था। फिर उसके बाद वो किस तरह फिरौन के महल तक पहुंचे और फिरौन ने जो है उसे अपने महल में रख लिया। इनकी परवरिश फिरौन के महल में होने लगी और फिर एक दिन इनसे कत्ले खता हो गया, और फिर जो है ये मिस्र को छोड़कर वहां से निकल खड़े हुए। आयत नंबर 22 को आप देखिए कि वलम्मा तवज्जहा तिल्का मदयना, और जब तवज्जहा रुख किया इसने, वो जिम्हा वजहुन चेहरे को कहते हैं, और तवज्जो करना यानी मुतवज्जो होना, अपने चेहरे का रुख करना। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रुख किया तिल्का, तिल्का जो लफ्ज है इसके मानी होते हैं तरफ। वैसे ये लाम काफ या लाम काफ वो से है, जैसे मुलाकात करना। और जब आप मुलाकात करते हैं तो क्या करते हैं कि किसी तरफ जो है वो आप अपना रुख करते हैं, तो तिल्का तरफ। मदियना मदियन के, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन कहा रुख किया, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदियन की तरफ मुतवज्जो हुए। ये मदियन का जो इलाका था, ये जो मदियन का इलाका था ये फिरौन की जो सल्तनत थी उसकी हुदूद से बाहर था, और मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो मिस्र की हुदूद से निकल खड़े हुए और मदियन के इलाके में पहुंच गए। तो यहाँ पे इसी बात का जिक्र है। और वो क्यों मिस्र से जो है वो निकले, इसलिए कि उन्हें अपनी जान का खतरा था। उन्हें किसी आदमी ने ये आकर खबर दी थी कि फिरौन जो है, फिरौन के दरबार में उसके महल में तेरे कत्ल के मंसूबे हो रहे हैं, मशवरे हो रहे हैं। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र को छोड़ दिया। वलम्मा तवज्जहा तिल्का मदियना, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन का रुख किया, कौला असा, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, असा शायद, करीब है रब्बी मेरा रब, यह दियानी सवा असबी, कि वो मुझे ठीक रास्ते पर डाल दे। तो अब जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मैं अपने अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूं कि मेरा रब जो है वो मेरी सही रहनुमाई कर दे। तो अल्लाह ताला से जो है वो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला पर तवक्कुल कर रहे हैं, अल्लाह ताला से रहनुमाई मांग रहे हैं। और आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम के इस किरदार में हमारे लिए बहुत ही जो है वो इबरत का पैगाम है और सबक है कि अल्लाह के तमाम बंदे और बंदियां जब उन पर कभी आजमाइश आ जाए तो अल्लाह के एतमाद पर जो है कदम उठाते हैं, वो अल्लाह को अपना वकील बनाते हैं, तो अल्लाह की रहनुमाई उनको हासिल होती है। क्योंकि ये तो मूसा अलैहिस्सलाम अगर आप देखें तो परेशान हाल है, बस उठ खड़े हुए हैं, ना मालूम मंजिल की तरफ इनका सफर जारी है। और आप तसव्वुर करें कि अगर किसी पर जो है वो किसी आप तसव्वुर करें कि अगर किसी की जान को खतरा हो तो इंसान के दिल की क्या कैफियत होती है। और ये जो आपको अपनी जान का जो तहफ्फुज करना था तो उसके लिए जो है वो खौफ की कैफियत, तहफ्फुज की कैफियत पूरी तरह आपके ऊपर तारी थी, और आप जो है वो अल्लाह से रहनुमाई मांग रहे थे, दुआओं के साए में अपना कदम आगे बढ़ा रहे थे। तकरीबन 10 दिन के सफर के बाद वो मदियन पहुंचते हैं, क्योंकि कोई तैयारी तो नहीं की हुई थी, बस एकदम उठ खड़े हुए और जो है वो सफर शुरू कर दिया। तो अब उस मौके पर कहते हैं अफा रब्बी अय्यहदियनी सवा असबील, मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर जो है वो डाल देगा। तो ये दुआ हमें भी मांगनी चाहिए। पलम्मा वरादा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे माँ पानी पर, मुफस्सरीन कहते हैं कि ये जो लफ्ज है वरादा, जैसे इस तरफ को आना, किसी काम को बखैर खूबी सर अंजाम पाने पर इससे फरागत के बाद वापस आ जाना, उसके लिए भी ये बोला जाता है ना, तो वरदा पहुंचने के लिए भी आता है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे माँ आ, और माँ के दो मानी हो सकते हैं, या तो चश्मा या कुआं। पहाड़ी चश्मे भी कुओं की तरह होते हैं, क्योंकि उन चश्मों तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत तंग होता है, वहां से पानी पीना पिलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि और वहां पे फिर भीड़ का होना। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो एक कुएं या चश्मे पर पहुंचे मदियना मदियन पे, वजदा अलैहि उम्मतम मिनन्नासी यस्कून, तो उसने देखा कि बहुत से लोग जो है वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। उम्मतन एक जमात, मिनन्नासी लोगों की, तो लोगों में से एक ग्रुप था, पूरी एक तादाद थी, एक भीड़ थी, वो क्या कर रही थी, यस्कून। तो वो जो माँ मदियन था ना, माँ मदियन मदियन का जो चश्मा या कुआं था उस पर वो पानी पिला रही थी। वो वजदा मिन दूनहिम, और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, वो वजदा और पाया मिन दूनहिम इनके सिवा, यानी ये जो लोग पानी पिला रहे थे इनसे बिल्कुल अलग। आपको पता है ना दून का लफ्ज जो है ये जवील अजदाद में से है, आगे पीछे ऊपर नीचे अलग हटकर मुख्तलिफ माने ये देता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जहाँ जहाँ पानी पिलाने के लिए भीड़ लगी हुई थी, आप जरा तसव्वुर करें कि एक चश्मा है, कुआं है, एक भीड़ लगी हुई है और लोग उस पर जो है वो उस भीड़ में मौजूद हैं ताकि वहां से पानी ले सकें, लेकिन उस जगह से बिल्कुल हटकर वजदा मिन दूनहिम, ये जो दूनहिम इस्तेमाल किया गया है, मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे ये बात पता चलती है कि उससे बिल्कुल हटकर, उससे परे इमरातैनी दो औरतें, तदूदान, तदूदान जो है इसके मानी है रोक रही है। दाल वो दाल जिसका रूट है, इसका मतलब है दफा करना, नजदीक ना आने देना, परे हटाना, रोकना। तो जैसे जो जानवर थे उनके, वो भी प्यासे होते हैं ना जानवर, तो जहां पे पानी होता है वहां रस्सी तोड़ा कर भी भाग कर वहां जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो दो औरतें हैं, ये भीड़ से बिल्कुल अलग होकर खड़ी हैं और तजुदान अपने जानवरों को, परे को हांक रही है, रोक रही है, हटा रही हैं, दफा कर रही हैं, नजदीक नहीं आने देती। तजुदान, यहाँ पे भी तस्निया का सिगा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो आप बड़े हैरान हुए, क्योंकि मुसाफिर हैं, खुद तो कुछ नहीं कर रहे। अब खड़े होके देख रहे हैं कि एक तरफ भीड़ है और लोग पानी पिला रहे हैं, और दूसरी तरफ दो औरतें हैं जो कि एक साइड पर अपने रेवड़ को, अपने जानवरों को रोक कर खड़ी हैं। और ये जो बेचारी दो औरतें थी, अब इनके जानवर भी जो है वो उस तरफ आना चाहते हैं जहां पानी है। और लेकिन ये क्या कर रही है, यानी जानवर आगे बढ़ने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, तजुदान उनको रोक रही है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए। क़ालमा ख़त्बुकुमा, मूसा अलैहिस्सलाम ने इन औरतों से पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है, तुम्हें क्या परेशानी है। बा जो है ये किसी अमरे अजीम, किसी अहम वाक्य के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, अहम काम के लिए, कि तुम्हारा क्या मसला है, तुम्हें क्या परेशानी है। कुमा, तुम दोनों को। क़ालता, दोनों ने कहा, ला नस्की, हम नहीं पानी पिला सकती, सकायस्की पानी पिलाना, हत्ता जब तक के युसदिरा, युसदिरा निकाल ले जाए, अर्रिया चरवाहे। तो स्वाद दाल रा जो है, वैसे तो आपको पता ही है कि ये किसी भी चीज के नुमाया हिस्से को, आला हिस्से को कहते हैं, जैसे जो है वो स्वाद दाल रा सदर सीने के लिए भी आता है ना, और इसी तरह ये लफ्ज जो है सदरा, ये वरादा का ओपोजिट है। वरादा का क्या मतलब है, कि पानी पिलाने के लिए किसी का कुएं पे पहुंचना, घाट पर पहुंचना। पीछे आपने पढ़ा था सूरत यूसुफ में भी आपने पढ़ा था, और सदरा का मतलब होता है, ये उसका ओपोजिट इस्तेमाल होता है, कि पानी पिलाने के बाद जो है फिर वापस चला जाना, किसी काम को करके बाखैरियत फारिग हो जाना। आपने ये आयत तो सुनी होगी ना, यौमइज़िन यस्दुरुन्नासी अश्तातल लियुरौ आमालहुम। तो यस्दुरुन्नासी, जिस दिन लोग जो है वो पलटेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है कि वो दोनों औरतें कहने लगी कि ला नस्की, हम नहीं पिलाती पानी, हत्ता उस वक्त तक, युसदिरिया जब तक के, युसदिरा वापिस ना चले जाए, जब तक के निकाल ना ले, अर्रिया चरवाहे, तो क्या निकालना ले, जब तक चरवाहे अपने जानवरों को निकालना ले। और यहाँ पे अर्रिया का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अर्रिया जो है ये रा आयन या इसका रूट है, और इसका मतलब होता है कि हिफाजत करना, राई, निगहबान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चरवाहे के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे रा की जमा है रिया, चरवाहे को कहते हैं। तो जब तक चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर वापस न चले जाएं, तो उस वक्त तक हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती, ला नस्की। तो अब ये के साथ ही वो वजाहत करती हैं कि यानी आखिर हम ही क्यों पानी पिलाने के लिए आई हैं, हमारे घर से कोई मर्द क्यों नहीं आ गया पानी पिलाने के लिए। कहती हैं, वह अबूना शेखुन कबीर, और हमारे वालिद जो हैं एक बहुत बूढ़े आदमी हैं। तो हमारे वालिद चूंकि बूढ़े हैं, हमारे घर में कोई दूसरा मर्द नहीं है, और हम जो हैं औरतों ने ही पानी पिलाना होता है, और हम जो हैं उस वक्त तक जो है वो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक वहां पे मर्द पानी पिला रहे होते हैं। हम मजबूरन इंतजार करते हैं, जब सब चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाते हैं तो उस वक्त जो है फिर हम पानी पिलाती हैं। मुफस्सरीन कहते हैं कि इस सारी गुफ्तगू में औरतों ने जिस खास चीज को नुमाया किया, वो क्या है, उनकी हयादारी है। कि हया की वजह से वो मर्दों के साथ मिक्सअप नहीं होती, और दूसरी बात ये कि अब एक अजनबी ने उनसे सवाल किया है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि आप यानी कैसे हैं आपके मर्द के वो घर बैठे हैं और आपको जैसे काम के लिए बाहर भेज दिया है, आप क्यों नहीं आप क्यों खड़ी हैं यहाँ पे? तो पूरी वजाहत की है कि दरअसल जो है वो वालिद बूढ़ा है और हम जो हैं हमें मजबूरन आना पड़ा है, और अब हम उस वक्त तक पिला नहीं सकती जब तक के मर्द यहाँ से जो है वो हट नहीं जाते। मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मालूम होता है कि उस दौर में भी औरतों और मर्दों का दायरा कार अलग अलग समझा जाता था। अगर औरतों को मजबूरी होती तो वो कोई काम करने के लिए फिर वो बाहर आती थी, यानी मजबूरी हो तो फिर औरतें जो हैं वो अपनी काम करने के लिए उस जमाने में बाहर आती थी, और उसमें भी मर्दों से घुलती मिलती नहीं थी, पूरी एहतियात और रख रखाव के साथ मर्दों से अलग थलग रहते हुए अपना फर्ज जो है वो अदा करती थी। जैसे आज की सोसाइटी में जो है ये समझा जाता है ना कि ये बड़ा तरक्की का जमाना है कि औरतें मर्द जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल शाना बशाना काम करें, हर मैदान में जो है वो इकट्ठे हों। तो अब आप देख लें कि यहाँ पर भी ये बात बताई जा रही है कि वो औरतें जो हैं क्या कर रही हैं कि अब मजबूरी है, घर में मर्द कोई नहीं है, बाहर पानी पिलाने के लिए आई हैं, लेकिन अब बाकी मर्दों से अलग खड़ी हुई हैं। ठीक है ना? वजदा मिन दूनहिम, ये दूनहिम जो है बिल्कुल अलग साइड पर, और अपने जानवरों को जाने नहीं दे रही पानी पीने के लिए, कहीं उनको फिर उन मर्दों के साथ मिक्सअप ना होना पड़े, और जब मर्द पानी पिलाकर चले जाएंगे तो फिर वो पानी अपने जानवरों को पिलाएंगी। और क्यों बाहर आई है? इसलिए कि वाले जो है वो बूढ़े हैं। इससे क्या बात पता चलती है? इससे जो है आप देखें कि इस्लाम के अंदर भी बिल्कुल यही बात है कि बाहर का काम जो है वो मर्दों के जिम्मे है, और घर का काम जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत का औरत के जिम्मे है, और अगर कोई मजबूरी हो, जरूरत पेश आए तो औरत भी जॉब कर सकती है, लेकिन जॉब में फिर ऐसे शोबों का और ऐसी जॉब का इंतखाब करना चाहिए जिसमें मर्दों से जो है वो अलग हो सके, तो मर्दों के साथ मिक्सअप ना होना पड़े। और फिर ये कि जॉब जब की जाए तो पूरी तरह एहतियात के साथ, रख रखाव के साथ, हयादारी के साथ, अलग थलग रहते हुए जो है वो जॉब की जाए। और ऐसे ही नहीं, जैसे शौकिया जैसे औरतें बहुत बाहर निकलना चाहती हैं और ऐसे ही, तो ये चीज सही नहीं है, यानी जरूरत के वक्त जो है वो निकला जा सकता है, जरूरत है, मजबूरी है, लेकिन उसमें मर्दों के साथ जो है वो आपस में मिक्सअप होना, उनके साथ मिलना और हंसी मजाक करना और बहुत ही फ्री होना, तो ये चीजें जो है ये सही नहीं है। अब आयत नंबर 24 देखिए कि फसका लहुमा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है कितने नेक थे कि उन्होंने क्या किया, फसका लहुमा, बस इन दोनों के लिए जो है वो पानी पिला दिया, सका बस पानी पिला दिया, लहुमा इन दोनों के लिए, यानी इन दोनों लड़कियों के जो जानवर थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को पानी पिलाया। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम को इन लड़कियों पर बड़ा रहम आया कि बाप बूढ़ा है, घर पे कोई मर्द नहीं है काम करने वाला, और ये मजबूरी में यहां पर आई हैं, तो आपने कुएं का पानी खींच कर, क्योंकि पानी कुएं से निकालना और फिर जानवरों को पिलाना ये इतना आसान तो नहीं था, और वैसे भी मूसा अलैहिस्सलाम मर्द थे, मजबूत थे, तो आपने जानवरों को पानी पिलाया, और इस तरह जो लड़कियां थी उनको इंतजार करने की और पानी खींचने की तकलीफ जो थी उससे बचा दिया। और पानी पिलाने के बाद, अब ये नहीं है कि पानी पिलाया, लड़कियों के ऊपर एहसान किया तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन लड़कियों से कोई बात कहते, कोई हंसी मजाक करते या कुछ, ऐसी कोई बात नहीं। फसका अल्लाहुमा, बस उनका पानी जानवरों को पिलाया, फुम्मा फिर तवल्ला इलज़िल्ली, तवल्ला फरमाया कि फिर मुंह फेर लिया। इससे आप अंदाजा करें कि उनकी जरूरत को पूरा करके तवल्ला, एक शरीफ आदमी की तरह क्या किया, मुंह फेर लिया, इला दिल्ली साये की तरफ, तो अपना रुख जो था एक साये की तरफ उन्होंने फेरा, यानी साये की तरफ चले गए, फकाला फिर कहा। और ये दुआ जो है ना, ये आयत नंबर 24 में, इसको भी आप सर्कल कर लें, हाईलाइट कर लें, बड़ी ही खूबसूरत दुआ है, और इस दुआ के अंदर बड़ी वसरत पाई जाती है। आप सोचें कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जान का खतरा है, मुसाफिर हैं, परेशान हाल हैं, भूखे हैं, माल कोई नहीं है, घर कोई नहीं है, शादी कोई नहीं हुई भी, यानी बड़े ही जो है वो सख्त और मुश्किल हालात में जो है वो निकले हुए हैं। और उस वक्त जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, और दुआ क्या करते हैं, रब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, परवरदिगार जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे मैं इसका मोहताज हूं। तो इसमें जो है एक बड़ी मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ के अंदर जो है वो बड़ी ही जो है वो बेबसी का भी इजहार है, अपनी जरूरत का भी इजहार है, परेशानी का भी इजहार है, यानी जो नेमत भी थोड़ी ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ही जरूरतमंद हूं, मैं मोहताज हूं, आप जो कुछ भी मेरी तरफ जो है वो नाजिल कर दे। तो अपनी परेशानी, अपनी मुसाफरत, अपनी जरूरत का इजहार करते हैं, बड़े सही वक्त पर सही जज्बे के साथ सही अल्फाज इनकी जबान से निकलते हैं। और मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पर इसके मानी है कि इससे मुराद जो है वो खाना भी है, इससे मुराद जो है वो कुव्वत, ताकत, माल, इबादत, क्योंकि खैर का लफ्ज मुख्तलिफ मानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, और उनको सभी चीजों की जरूरत थी, घर भी चाहिए था, शादी भी नहीं हुई भी थी, तो आपने ये दुआ मांगी। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, फजा अथु एहदहुमा, तो फजा अथु तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, एहदहुमा इन एक इन दोनों में से, वो जो दो लड़कियां थी ना जिनके जानवरों को पानी पिलाया था, उन दोनों में से एक लड़की मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। और कुरान ने इसको बड़ा नुमाया किया है, इसको भी आप सर्कल करें कि तमशी अलस्ते हया, तमशी वो चल रही थी, अला पर इस्तेहया शर्माती हुई, शर्मो हया के साथ, यानी वो शर्मो हया के साथ चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो है वो आई। ये चीज है जिसको कुरान जो है वो नुमाया करके पेश करता है कि जो शरीफ औरतें होती हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, उनकी गुफ्तगू, उनकी चाल चाल ढाल, उनकी हर हरकत के अंदर जो है वो हया जो है वो टपकती है। तो आप देखें कि पीछे मिन दूनहिम बिल्कुल अलग खड़ी थी, फिर उसके बाद अलग होने की वजह भी बताई कि चरवाहों के जाने का इंतजार करती रहती हैं। फिर उसके बाद अब आप देखें कि यहाँ पर जो है जो खास बात जिसको कुरान नुमाया करके कह रहा है कि अब इतना ही काफी था कि वो चलती भी आई, बल्कि क्या कहा, तमशी अलस्ते हया, शर्मो हया के साथ चलती हुई आई। हजरत उमर रजी अल्लाह ने इस फिक्रे की ये तशरीह की है कि वो शर्मो हया के साथ चलती हुई अपना मुंह घूंघट से छुपाए हुए आई, इन बेबाक औरतों की तरह बेबाकाना नहीं आई, दराना नहीं चली आई, जो हर तरफ निकल जाती और हर जगह घुसती हैं। और सहाबाए कराम के अहद में हयादारी का जो इस्लामी तसव्वुर था वो क्या तसव्वुर था, जो अल्लाह के नबी ने सिखाया था, जो कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत से उन्होंने समझा था। तो अब आप यहां पर भी देखें कि वो जो लड़की आई है तो निहायत शर्मो हया के साथ, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो घूंघट निकाल कर आई, अपने आप को छुपा कर आई, क्योंकि चेहरा ढांपना भी हया की अलामत है। तमशी अलस्ते हया कालत, फिर वो कहने लगी, इन्ना अबी यदऊ का, कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। अब आकर जो है वो ये नहीं कह रही कि मैं बुला रही हूं, बल्कि क्या कहती हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो आपको बुला रहे हैं, क्यों, ले यजजिया का, ताकि वो आपको सिला दें, ताकि वो आपको उजरत दे, अजरा मा सकैता लना, अजरा उजरत सिला, मा सकैता जो तूने पानी पिलाया, लना हमारे लिए, ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है इसका अजर आपको दे दे। तो उन्होंने ये बात जो है मूसा अलैहिस्सलाम को उसने बताई कि असल वजह क्या है कि आप को जो आपने जानवरों को पानी पिलाया था उसका सिला देना है। अब आप देखें कि इससे ये बात भी पता चलती है कि इस लड़की के जो वालिद थे वो भी बहुत ही नेक थे, एहसान करने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक नौजवान ने जो है वो खिदमत की है और बगैर मुआवजे के हमारा एक काम किया है, तो फिर हम क्यों ना हम भी उसके साथ जो है वो एहसान करें, तो हम भी उसको उसका जो है वो मुआवजा दें, मुआवजा दें। फलम्मा जाअहू, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे आए इसके पास, वकस्सा अलैहिल कससा, और बयान किया इसके सामने अपना हाल, काला ला तखफ, तो उन्होंने कहा कि तू खौफ ना कर, नजउता मिनल कौम जालिमीन, तूने निजात पाई है जालिमों की कौम से। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो लड़की के बाप के पास पहुंचते हैं और उसके बाद जो है वो जाकर अपना जो भी मसला था, परेशानी थी, वो सारी उनको जाकर जो है वो बयान करते हैं और वो उनको जो है वो तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि अब आप खौफ ना करें, नजउता मिनल कौम जालिमीन। और आपको याद है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले थे तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी ना, फखरजा मिनहा खाइफन यतरक्कबू कबू काला रब्बि नज्जिनी मिनल कौम जालिमीन। और अब यहाँ पे ये इनको तसल्ली देते हैं कि आपने जालिमों की कौम से निजात पाई है। तो ये जो लड़की के वालिद थे इनके बारे में आता है कि इनका नाम था शोएब, शोएब अलैहिस्सलाम। और शोएब अलैहिस्सलाम जो थे ये कौन थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और शोएब अलैहिस्सलाम भी। तो इस तरह जो है इनके अंदर एक नस्बी ताल्लुक भी था दोनों के अंदर ना। आप देखिए कि ये जो मदियन का कबीला था जिसका जिससे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो इस तरह अहले मदियन यानी शुएब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो है नसब का ताल्लुक था और शुएब अलैहिस्सलाम जो है यहाँ पे रहते थे मदियन में। कालत एहदा हुमा, अब इन दोनों औरतों में से, इन दोनों लड़कियों में से एक ने कहा, या अबती, ए हमारे अब्बा जान, या अबती ए अब्बा जान, इस्ताजिरहु के नौकर रख लीजिए इसको, हमजा जीमरा अजर उजरत, तो आप इसको मुलाजिम रख लीजिए। इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवीयुल अमीन, इन्ना खैरा, बेशक बेहतरीन है, बेशक बेहतरीन आदमी वो हो सकता है, मन मन वो जो इस ताजरता जिसको आप नौकर रखें, मुलाजिम रखें, उसकी क्या सिफत हो सकती है, अल कवीयुल अमीन, नंबर एक वो मजबूत हो, नंबर दो वो ईमानदार हो। आप देखिए सूरत नमल आयत 39 में आपने जो है वो पढ़ा था ना कि वो जो तख जो है वो उठाकर लाया था, तो उसकी भी क्या सिफ थी, उसने क्या कहा था कि वह इन्नी अलैही लकवीयुन अमीन, कि मैं ताकत भी रखता हूं और ईमानदार हूं। तो असल में कभी भी किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाए, वो खा पेपर चेक करने की हो, किसी के पास कोई पैसे रखवा दिए जाएं, या किसी को अपना राज बता दिया जाए, किसी से कोई मशवरा ले लिया जाए, किसी को जॉब पे रखा जाए, कुछ भी, यानी कहीं भी कोई भी किसी भी सिलसिले से किसी से कोई एग्रीमेंट हो, कोई बातचीत हो, तो असल सिफात क्या है कि अलकवी, मजबूत होना चाहिए, वो काम कर सकता हो, उसके अंदर ताकत हो, क्योंकि अगर ताकत नहीं होगी तो काम कैसे होगा। और दूसरी बात क्या है कि ईमानदार होना चाहिए, उसमें वो खयानत करने वाला ना हो। तो अब जो है ये बेटी जो है इसने बताया है कि आप जिसको मुलाजमत पर रखें वो मजबूत आदमी होना चाहिए ताकि मुशक्कत बर्दाश्त कर सके, क्योंकि काम करना इतना आसान तो नहीं होता। मसलन आप देखें कि आप जो है वो क्लास ही लेती हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपको थकना नहीं है, आपको सोना नहीं है, ये नहीं कि जब दिल चाहे आप इसको लें, जब दिल चाहे ना लें। एक एक मुस्तकिल मिजाजी चाहिए ना, एक तसलसल चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या है कि मसलन आप पेपर देती हैं तो आपको जबानी करना है, कोई नहीं, टीचर तो मौजूद नहीं है, आप क्लासरूम में तो नहीं होती, और क्लासरूम में हो भी तो बास तालिबे इल्म जो है वो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन अगर ये पता हो कि अल्लाह इज वॉचिंग मी तो इंसान तो नहीं फिर देखता ना, उसको पता होता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इंसान क्या करता है कि फिर ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करता। तो कहा कि जो मजबूत और ईमानदार हो तो उसको जॉब पे रखना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लड़की को कैसे पता चला था कि ये मजबूत भी हैं और ये ईमानदार भी हैं। मुफस्सरीन कहते हैं कि जब उन्होंने जो है वो बकरियों को, जानवरों को पानी पिलाया था, तो जिस तरह से उन्होंने भीड़ के अंदर, और कह रहे हैं कि बाज कहते हैं कि कुएं के ऊपर पत्थर था जिसको हटाकर अकेले ही उठा लिया था, जिसको कई लोग मिलकर उठाते थे, तो इस तरह जो है इन्होंने पानी पिलाया था और अकेले कुव्वत के साथ जो है वो कुएं से पानी खींचा था। और इमानत के लिहाज से मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जब वो लड़की वापस घर आने लगी, क्योंकि रास्ता बताना था मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि तुम जो है मेरे पीछे चलो और मैं आगे चलूंगा, और अगर यानी रास्ता बताने के लिए तुम पत्थर फेंकती जाना तो मुझे रास्ता जो है वो पता चलता जाएगा। तो ईमानदार थे ये, उनके अंदर ये सिफत पाई जाती थी, क्योंकि उनका जो तौर तरीका था, उनका जो गुफ्तगू का मूसा अलैहिस्सलाम का अंदाज था कि पानी पिलाने के बाद कोई ऐसी बात नहीं की, साइड पर जाकर फिर अलग होकर बैठ गए, तो लड़कियां जो थी उन्होंने मुशाहिदा किया कि ये कुव्वत वाले भी हैं और ईमानदार भी हैं, तो इसलिए मशवरा दिया कि इन्हें जो है वो अपना मुलाजिम रख लें। तो किसी की भी ताकत या ईमानत का कैसे पता चलता है, जब आप उसके साथ डीलिंग करते हैं। जैसे हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गुलाम मैसरा के साथ जो है वो तिजारत के लिए भेजा था, तो बहुत मुतासिर हुई थी, यहाँ तक कि फिर निकाह का पैगाम भेजा था। और इसी तरह अहले मक्का भी आपको अमीन और सादिक के नाम से याद करते थे। अब जो है वो लड़की के वालिद ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क़ाला इन्नी उरीदू, कहा कि बेशक मैं इरादा रखता हूं अन उनकी हा का कि मैं निकाह कर दूं तुझसे, यानी मैं चाहता हूं कि मैं निकाह कर दूं तुझसे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं निकाह कर दूं आपसे। ए दबना तैया हा तैने, ए दा एक बेटी का, इबना तैया असल में ये इबना तैन था, ये तस्निया का सीगा था, और इन दो में से हा तैनी, हा तैनी जो है ये भी तस्निया का इसम इशारा, तस्निया का सीगा है कि ये जो दो मेरी बेटियां हैं इन दोनों में से एक का निकाह मैं आपसे करना चाहता हूं। अला अंता जुरानी समानिया हिजज, अला इस बात पर अंता जुरानी कि आप खिदमत करें मेरी, कि आप मेरी मुलाजमत करें, कितना अर्सा, समानिया हिजज, समानिया 8 को कहते हैं, हिजज साल के लिए इस्तेमाल होता है, साल के लिए आप आम का लफ्ज बोल सकते, आम का लफ्ज पढ़ चुके हैं, आइन अलिफ मीम आम, वुस्सत और फरावानी में खैर वफियत का साल, सना का पढ़ चुकी हैं, सनीन सनातुन सख्ती के साल को कहते हैं, कहत साली खुश्क साली तकलीफ का साल, हौल हौलैन जो है चांद के मुताबिक जो है वो पूरा साल का एक चक्कर, यानी एक हालत से दूसरी हालत का बदलना, ये भी पढ़ चुकी हैं। और चौथा लफ्ज आपने आज साल के लिए पढ़ा, ये हिजज का है, हिजज जो है ये हज से है, हज साल में एक बार आता है, और इसी से जो है वो वाहिद हज्जतुन है, तो बार बार आना जाना, बकसरत आमदो रफ्त करना। पुराने जमाने में कोई कैलेंडर तो होता नहीं था, तो आम लोग हजों के सालों से गिनती कर लिया करते थे, कैलेंडर का हिसाब रखते थे। तो समानिया हिजज, फरमाया के आप मेरे पास 8 साल तक जो है वो मुलाजमत करें, फाइन अतममता अशरन, और अगर आप जो है वो 10 साल पूरे कर दें, फमिन इंदिक, तो ये जो है ये तुम्हारी मर्जी है। वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, और मैं आप पर सख्ती नहीं करना चाहता, शीन काफ काफ इसका मतलब होता है फाड़ना। और जैसे ना शक्ल कमर और चांद का दो टुकड़े हो जाना, और इसी तरह शक्का का मानी होता है मुशक्कत, जैसे किसी से उसकी ताकत से ज्यादा काम लिया जाए, किसी को तकलीफ में डाला जाए। ममा उरीदुन अशुक्का अलैक, मैं आप पर कोई सख्ती तो नहीं करना चाहता, यानी 8 साल का एग्रीमेंट है, अगर आप 10 साल कर दें तो ये आपकी मर्जी है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन, तुम इंशाअल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे। अब आप देखेंगे इससे ये बात भी पता चलती है कि किसी को जॉब देने से पहले उसके साथ पूरी बात क्लियर कर लेनी चाहिए कि क्या मुआवजा देना है, कितने अरसे के लिए, क्या टाइमिंग होंगे। तो आपस में एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, गुफ्तगू के जरिए या पेपर के ऊपर, क्यों, ताकि बाद में जो है कोई मसाइल पैदा ना हो। और फिर एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए कि किसी को तंग नहीं करना चाहिए कि जितनी काम ले रहे हैं आप उतनी तनख्वाह ना दें, या ये कि टाइमिंग ज्यादा बढ़ा दें या तनख्वाह कम कर दें, या ये कि पहले चीजें क्लियर नहीं की और कहें कि हम तो ऐसे समझे थे ऐसे समझे थे। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत यहाँ पे जो है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मामला हमारे सामने आता है। तो क्या है कि आप मुझे भी इंशाल्लाह नेक आदमी पाएंगे, यानी ये जो आपसे काम लेना है, वक्त की पाबंदी है, तो इसमें मैं आपके साथ आसानी बरतूंगा और आप मुझे डीलिंग में अच्छा इंसान पाएंगे। इससे क्या बात पता चलती है कि किसी भी इंसान का पता तब चलता है जब वो मामलात में अच्छा होता है। अगर कोई नमाज, रोजा, जकात, हज देता है, उसके माथे पर जो है वो सजदों का गट्टा पड़ा हुआ है, उसकी शलवार पांचे टखनों से ऊपर है, हिजाब है, स्कार्फ है, हज उमरा बहुत बजाहिर इबादत गुजार है, लेकिन डीलिंग अच्छी नहीं है, तो भी वो मुकम्मल स्वाले नहीं है। अब आप देख लें कि सारी डीलिंग की बात हो रही है, यहाँ पे कहीं हज, रोजा, नमाज की बात नहीं हो रही, लेकिन क्या कहते हैं कि इंशाल्लाह आप मुझे नेक आदमी पाएंगे। इससे बात क्या पता चलती है कि ये जो मामलात है ना, इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी के बारे में जानना चाहते हो कि वो शख्स कैसा है, जैसे कोई शख्स किसी की बहुत तारीफ कर रहा था, तो आपने पूछा क्या तूने उसके साथ कभी सफर किया है, क्या तूने उसके साथ कभी लेन देन किया है, उसने कहा नहीं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के अखलाक का अगर पता करना हो ना, तो जो है वो उसके साथ सफर किया हुआ हो, उसके साथ तिजारत की भी हो, कोई लेन देन किया हो, तो पता चलता है वो शख्स कैसा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कौला जालिका बैनी व बैनक, कि ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, अय्यमल अजलैनी कदैतु फला उद्वाना अलैह, इन दोनों मुद्दतों में से मैं जो भी पूरी कर दूं उसके बाद फिर मुझ पर कोई ज्यादती ना हो। कौन सी दो मुद्दतें, यानी समानिया हिजज या फिर अशरन हिजज, यानी 8 साल करूं मैं या फिर 10 साल करूं, जो भी मुझसे हो सका मैं वो पूरा कर दूंगा, इसके बाद फिर आप मुझ पर कोई ज्यादती ना करें, यानी इतनी देर ही मैं आपके पास रहूंगा। वल्लाहु अला मा नकुलु वकील, और जो कौल करार हम कर रहे हैं इस पर अल्लाह हमारा निगहबान है। तो आप देखिए कि यहां पर हमें क्या बात पता चलती है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर उन्होंने अपना एग्रीमेंट जो है वो मुकम्मल किया, अल्लाह को उन्होंने अपना वकील बना लिया। तो ये है जो असल बात यहाँ पर जो है वो एक अमल और उसूल के तौर पर हमारे सामने आती है कि इनका वकील जो था वो कौन था, अल्लाह रब्बुल इज्जत थे, कि उन्होंने अल्लाह को अपना जो है वो वकील बना लिया। तो क्या करना चाहिए कि जब भी किसी के साथ कोई एग्रीमेंट हो, कोई बात हो, तो अल्लाह को अपना वकील जो है वो बनाना चाहिए। फलम्मा कदा मूसा अजला, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कितनी मुद्दत पूरी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों मुद्दतों में से वो मुद्दत पूरी की जो ज्यादा कामिल और इनके खुसर के लिए ज्यादा खुशगवार थी, यानी 10 साल। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो पूरी कर दी, वह सारा बे अहलिही, वह सारा और मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो चल पड़े बे अहलिही अपने घर वालों को लेकर। तो अब अपनी बीवी को लेकर, अपने घर वालों को लेकर वो चल पड़े, आनसा मिन जानिबी तूरी नारा, और उन्होंने आनसा इसका मतलब होता है मानूस होना, देखना। तो उन्होंने देखी जानिब तूरी, तूर की जानिब, तूर पहाड़ का नाम है, तो तूर की तरफ उन्हें एक आग नजर आई। काला ले आले ही, उन्होंने अपने घर वालों को कहा, इन कुसु, नीम काफ सा इसका रूट है, इसका मतलब है किसी चीज के इंतजार में ठहरना। तो उन्होंने कहा कि ठहरो, नहीं तुम यहां जरा ठहरो, इन्नी अनस्तु नारन, बेशक मैंने आग को देखा है, लाली शायद कि मैं आती को मिन्हा, मैं लाऊं तुम्हारे पास, यानी वो जो मैंने आग देखी है शायद मैं वहां से जो है वो तुम्हारे पास लेकर आऊं, बेखबर इन कोई खबर, यानी मानी क्या थे कि वहां कुछ रोशनी सी देखी है, शायद मैं वहां तुम्हारे लिए कोई खबर लेकर आ जाऊं, यानी रास्ता कैसे आगे जाना है या कोई रहनुमाई मिल जाए, और जज्वत मिन नारी, या आग का कोई अंगारा उठा लाऊं, लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम जो है वो ताप सको। जज्वा, जज्वा जो है इसका रूट है जीम दाल वो, जलने और शोला खत्म होने को कहते हैं। अब आप देखें कि शोला जब जलता है तो कोयला बन जाता है, कोयला जो है जब खत्म होने लगता है तो उसके ऊपर राख सी आने लगती है, तो उसको ये कहते हैं जज्वा। तो शायद मैं वहां से कोई आग जो है वो आग का अंगारा ले आऊं, और जज्वा तिन मिन नारी, आग का कोई अंगारा, जैसे होता नहीं पुराने जमाने में या देहाती इलाकों में आप देखें कि लोग एक चूल्हे में लोग आग जलाते थे, फिर उससे कोयला लेकर अपने लकड़ियों के अंदर रख दिया, तो उनकी आग भी जो थी वो दहक उठी। तो कहा लअल्लकुम तस्तलून, शायद कि तुम ताप सको। तस्तलून जो है इसका रूट स्वाद लाम या बताया जाता है, आग में डालना, जलना, तो क्या करो कि तुम उससे आग ताप सको। कहते हैं कि ये बड़ा ही सर्दी का मौसम था, तो जरूरत थी कि उस वक्त जो है वो अपने घर वालों के लिए जो है वो हीट का इंतजाम करते हैं। जैसे आजकल यहाँ पे स्नो सीजन है कनाडा में, तो आप देखें कि हीट के लिए जो है वो इंतजाम किया जाता है हीटिंग का, और घर वालों की जरूरियात को पूरा करना ये शोहर की जिम्मेदारी है। फलम्मा अताहा नूदिया मिन शाते इल वादिल अयमनी फिल बुकतिल मुबारकती मिन शजरती अय्या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। अब आप इस आयत को देखें कि लंबी सी आयत है वैसे, और आपस में कैसे जुड़ी हुई है आप गौर करें। फलम्मा अताहा, बस जब आया इसके पास, अब मूसा अलैहिस्सलाम किसके पास आए, अताहा आग के पास, क्योंकि दूर से आग को देखा था ना, आग लेने आए थे ना। फलम्मा अताहा, जब आग के पास आए, आग मुअन्नस है, हा की ज़मीर आई है, नू दिया ये माजी मजहूल है, नून दाल या इसका रूट है, आवाज दी गई। तो आए तो वो आग लेने के लिए थे, उनको आवाज एक सुनाई दी, आवाज दी गई। आवाज कहां से आई थी, मिन से शाती, शाती जो है ये लफ्ज जो है ये किनारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसका ये वाहिद है शाती, और इसकी जमा है शवाती। शवाती जो है वो इसकी जमा के तौर पर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और अगर आप गौर करें तो ये जो किनारा है, किनारे के लिए आपने कुरान में कई लफ्ज पहले भी पढ़ लिए है ना, आप याद करें, जैसे आपने अक्सा पढ़ा था, अक्सा जो है वो भी किनारे के लिए है, लेकिन कौन सा किनारा था, दूर का किनारा था, दूर का किनारा आपने पीछे पढ़ा है अक्सा। और जैसे अभी मूसा अलैहिस्सलाम को भी बताने के लिए कि आपके जो है वो कत्ल के लिए प्लानिंग की जा रही है, तो एक शख्स दूर के से भागता हुआ आया था ना, और बनी इसराइल में आपने पढ़ा था, और आपने जो है ये कहाँ ये लफ्ज पढ़ा किनारे का, और कौन कौन से लफ्ज किनारे के लिए पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लफ्ज जो अभी आप पढ़ रही हैं ये आपके लिए नया लफ्ज है, और किनारे के लिए वैसे कुरान में आपने 13 लफ्ज पढ़े हैं, जिसमें तर्फ भी है, शफा है, और हर्फ है, उफ है, हद है, उद्वा है, सदफ है, साहिल है, समंदर के किनारे को कहते हैं। तो शाती जो है किसी चीज के दो किनारों में से कोई एक किनारा, दरिया या वादी की कोई एक तरफ या एक किनारा, इसको जो है वो कहा जाता है। और किनारा, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे जब आग के पास पहुंचे तो उन्हें आवाज दी गई मिन शाती एक किनारे से, यानी वादी के एक किनारे से मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो आवाज दी गई। अलवादी वादी, अलएमनी दाई, यानी वादी के दाएं किनारे से मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज दी गई। फिर बुक आती, बुक आती जो है इसका रूट है बाकाफ आयन, और ये कहते हैं जमीन के एक टुकड़े को, जमीन का वो हिस्सा जो आसपास के हिस्सों से नुमाया हो, जो आसपास के हिस्सों में जो है वो थोड़ा खास हो, नुमाया हो, तो बुक आती। अल मुबारक आती, खैरो बरकत वाली, मिन शजरती एक दरख्त से। तो अब आप देखें कि कैसे फिर आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगी, क्योंकि इतना ज्यादा एक इकट्ठा ही है ना। तो पहले तो आप ये कहेंगी कि बस जब वो पहुंचे उसके पास, और आप जो है आप फिर पीछे से पढ़ना शुरू करें कि उन्हें उन्हें यहां से पढ़ना शुरू करें, अल मुबारक आती से यहां से पढ़ना शुरू करें, मुबारक अल बुकाती, उल्टा चले, मुबारक अल बुकाती खित्ते, मुबारक जमीन के टुकड़े से, मुबारक जमीन के टुकड़े के अल अईमनी दाई दाई, शातेल वादी 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 के दाएं किनारे, तो वादी के दाएं किनारे पर मुबारक जमीन के टुकड़े से एक दरख्त से उन्हें पुकारा गया। तो इस तरह से जो है जैसे आपके जहन में एक जो है वो तसव्वुर बैठ जाएगा कि जब आप तर्जुमा करेंगी तो तर्जुमा जो है वो कैसे करेंगी। पुकार क्या दी गई, अई या मूसा, के ए मूसा, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, के मैं जो हूं वो सारे जहान वालों का रब हूं, सारे जहान वालों का मैं मालिक हूं। तो अब आप देखें कि ये सारी सिफात जो यहां पर बयान की गई हैं, ये किस चीज के लिए सिफात जो है वो बयान की गई हैं, कि मूसा अलैहिस्सलाम को जहां से आवाज आई थी वो जगह, जो जगह थी वो बहुत ही मुबारक थी। क्यों? वो एक वादी थी, और वादी का जो है वो दाया किनारा था, और वो वादी मुबारक खिता था, और एक दरख्त था जहां से ये आवाज आई थी, और आवाज में कहा गया कि ए मूसा मैं जो हूं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं। तो वो जो चमकती हुई आग थी वो दरअसल वो अल्लाह की तजल्ली का नूर था। वो जो वादी के किनारे से आवाज थी वो पहाड़ की जो दाई तरफ से आग के शोले बुलंद हो रहे थे, वो दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हम कलाम थे, अल्लाह ताला मुखातिब थे। इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं सारे जहान वालों का मालिक हूँ। वा अन अल्के असाक, पर ये कि तू फेंक दे अपनी लाठी। अब आप देखें कि लाठी के लिए दो लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होते हैं, एक मिनसा मिनसात, और वो कहते हैं मरीज की लाठी को, और एक आम ये जो चरवाहे की लाठी है उसके लिए असा का लफ्ज जो है वो आता है। तो एक मरीज के लिए मिनसा का आता है मिनसातुन, और ये है असाक, कि फेंक दे अपनी लाठी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनके पास एक लाठी थी। फलम्मा रहा, जू ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, तहतजू तहतजू हा जा जा, इसके मानी है हरकत करना। तो वो लाठी जो थी वो बल खा रही थी, हरकत कर रही थी, कान्हा जानुन, गोया कि वो सांप है। और आप ये पीछे सूरत अश्शुरा में भी पढ़ चुकी हैं, जान का लफ्ज जो है ये सांप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जूं ही लाठी को देखा, तो लाठी को फेंका, तो उन्होंने देखा कि लाठी तो ऐसे है जैसे कि एक जो है वो सांप की तरह वो बल खा रही है। वल्ला मुदबिरन, मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने मुंह फेर लिया, मुदबिरन पीठ फेर कर, तो फेर ली मुदबिरन अपनी पीठ पीठ, वलम युअक्किब, और मुड़कर भी ना देखा। अब यहाँ पे इंसानी कैफियत का आप अंदाजा करें कि मूसा अलैहिस्सलाम थे तो एक इंसान ही ना, तो लाठी जब सांप की तरह बल खाती हुई उनको नजर आई तो पीठ फेर कर भागे, वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब, पीछे मुड़कर भी ना देखा। या मूसा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने पुकारा, अकबिल, आगे आ, मुतवज्जो हो, वला तखफ, और खौफ न कर, इन्नका मिनल आमिनीन, तू बिल्कुल महफूज है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को तीन बातें कही। पहली चीज क्या थी कि पलट कर आ, इधर को आ, दूसरी चीज खौफ न कर, तीसरी चीज तू अमन में है, परेशानी की कोई बात नहीं है। उसलुक यदा का फी जेबी का, और उसलुक डालो अपने हाथ को अपनी जेब में, यानी अपने गरेबान में, अपना हाथ अपने गरेबान में डाल, तखरुज बैदा मिन गैरे सू, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। बैदा ये सफेद के लिए आता है, चमकने के लिए आता है, बा या दाद इसका रूट है। वद मुम, दाद मीम मीम का मतलब होता है किसी को मिला लेना, जैसे जमीमा, जमीमा नहीं होता, जैसे कोई बुक होती है बाद में कहते हैं कि उसका जमीमा भी उसके साथ दूसरे हिस्से में डाल दिया गया है, तो जमीमा का मतलब होता है किसी चीज को जो है उसके साथ मिला देना, सुकेड़ लेना। तो आप क्या करें कि वद मुम मिला ले, इले का अपनी तरफ, भींच ले अपनी तरफ, जनाहा का, जनाहा का अपने बाजू को, मिनर राह भी खौफ और डर से, फजानी का बस, ये दो जो हैं बुरहानानी, ये दो दलीलें हैं, ये दो रोशन निशानियां हैं। कौन सी दो रोशन निशानियां? एक ये लाठी जो कि सांप बन जाती है, दूसरा आपका हाथ। तो अपने हाथ को आप गरेबान में जब डालेंगे तो चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू जो है उसको भींच ले। इसके मानी क्या है कि जब तेरे दिल में खौफ पैदा हो, कोई खतरनाक मौका आए, तो अपने हाथ को, अपने बाजू को जो है वो भींच लिया कर। भींचना कैसे है, सुकेड़ना कैसे है, कि बाजू को पहलू के साथ लगाकर दबा लिया जाए। नंबर दो, एक हाथ को दूसरे हाथ की बगल में रखकर दबाया जाए तो आप महसूस करेंगे कि दिल का खौफ जो है वो दूर होता है। तो ये दो तरकीबें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो बताई, और कहा कि फजानी ना, फजानी का बुरहानान, तो जा का तस्निया है जान, तो ये दो है तेरे लिए बुरहानान निशानियां। बुरहान जो है ये लफ्ज जो है ये दलील को कहते हैं, ये ऐसी दलील को कहते हैं जो बहुत ही वाजे हो, तो ये दो रोशन निशानियां हैं, खुद दलील है, वाजे है, और दूसरों को भी चीज को वाजे कर रही है। कहां से है ये निशानियां? ही मेरे रब्बी का, तेरे रब की तरफ से, इला फिरौन मलाही, फिरौन उसके दरबारियों के सामने, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक को बड़े ही नाफरमान लोग हैं। अब आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है गए तो थे आग लेने के लिए, और इनको जो है वो पैगंबरी मिल गई, और साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो मुजजात भी मिल गए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तेरा मिशन जो है वो क्या है कि आप फिरौन के पास जाइए, फिरौन और उसके सरदारों के पास, क्यों वो बड़े ही नाफरमान लोग हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने तीन बातें कही, आयत नंबर 33 से 35 तक आप देखेंगी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने तीन बातें रखी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन जवाब दिए। पहली बात रखी, काला रब्बे इन्नी कतलतु मिनहुम नफ्सन फअखाफु अन यक्तुलून, कि ए मेरे आका, ए मेरे रब, इन्नी कतलतु मिनहुम नफ्सन, मैं तो इनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूं, अखाफ हुआ यक्तुलून, मुझे डर लगता है, मैं डरता हूं कि वो तो मुझे मार डालेंगे। अब ये नहीं कहा कि मैं वहां जाना नहीं चाहता, बल्कि क्या है कि बताते हैं कि मैं जो है जब मैं जाऊंगा तो जो है चूंकि मुझसे ये गलती हो चुकी है, तो ऐसा ना हो कि मैं इस गलती के साथ वहां पे जाऊं तो वो मुझे गिरफ्तार कर ले और जिस मकसद के लिए आप मुझे भेज रहे हैं उस वो मकसद ही फौत हो जाए। तो पहली बात है, बस मुझे खौफ है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। और फिर आप देखें कि आयत 34 में नंबर 2 बात कहते हैं, वाकी हारून हुआ अफसहु मिन्नी लिसानन, और मेरा भाई हारून हुआ अफसहु, वो ज्यादा जोरावर है, मिन्नी मुझसे लिसानन जबान में, तो वो मुझसे ज्यादा जबान आवर है। अफसहु जो है ना, इसका मतलब होता है, रूट है फा स्वाद हा, इसका मतलब है दूध से मलाई को छानना, मलाई हटाना, जबान से गैर जरूरी बातों को निकाल देना। तो मेरा जो भाई है हुआ अफसहु, वो ज्यादा फसी है, वो ज्यादा जो है वो क्लियर है, मिन्नी मुझसे लिसानन गुफ्तगू में, तो जबान दानी में मेरा भाई मुझसे ज्यादा अच्छा है। फअरसिलहु मईया, बस आप उसको मेरे साथ भेज दीजिए, रिद अन, रा दाल हमजा जो है इसके मानी है मदद करने के लिए, रिद अन मददगार के तौर पर, मदद देने के लिए, कि आप ताईद के लिए मदद के लिए मेरे साथ भेजें, युसद्दिकूनी ताकि वो मेरी तस्दीक करे, ताईद करे। तो दूसरी बात ये कही कि मेरे भाई को मददगार के तौर पर मेरे साथ भेजें। आप देखें कि कोई भी काम करना हो, एक अकेला होता है और 2 11 हो जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई होते चली जाती हैं चीजें। तीसरी बात कही, इन्नी खाफ हुआ युकज्जिबून, और मुझे ये अंदेशा है कि वो लोग मुझे झुटला देंगे। आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने 3 जवाब दिए, काला सनशुद्दु अदूद का बे अखी का, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सनशुद्दु अन करीब हम मजबूत करेंगे, शीन दाल दाल इसके मानी है मजबूत करना, हम अन करीब मजबूत करेंगे, अदूदा का ऐन द्वाद दाल, ये कहते हैं कोहनी से लेकर कंधे तक के बाजू को, तो हम जो है आपको मजबूत करेंगे बाजू से, आपके बाजू से, बेखी का आपके भाई के, यानी तुम्हारे भाई के जरिए से तुम्हारे बाजू को मजबूत कर देंगे। मानी क्या है कि तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हें कुवत पहुंचाएगा। नंबर 3, वनजअलु लकुमा सुल्तानन, और तुम दोनों को ऐसा सुल्तान अता करेंगे, फला यसलूना इलैकुमा, कि वो तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। सुल्तान जो है ये गलबे को कहते हैं, दबदबे को कहते हैं, शख्सी हैबत और रोब को कहते हैं, कि तुम दोनों को ऐसा खास शौकत और हैबत अता करेंगे जिससे ये लोग तुम तक पहुंच ना सकेंगे। तुम क्या करो, वी आयातीना, अब जो है ये तीसरी बात बताई कि मेरे ये जो मोजे हैं ये लेकर जाओ, वे आई आती ना हमारे निशानियों के साथ, अंतुमा तुम दोनों, कि तुम दोनों जो है मेरी निशानियों के साथ जो है, वह मनिता बाकुमा, और जो तुम दोनों की पैरवी करें, अलगालिबून वो गालिब रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 बातें कही, पहली बात तो ये कि जैसे आपकी ख्वाहिश है वाकई मैं आपके भाई हारून को जो है वो आपके साथ भेजूंगा ताकि आपके हाथ को मजबूत करे। नंबर 2, हम आपको जो है वो सुल्तान देंगे, आपके शख्सियत और किरदार के अंदर जो है एक शौकत, एक हैबत आपको देंगे कि लोग आपको हाथ नहीं लगा सकेंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। नंबर 3, हमारे मोजे लेकर जाओ। कौन से मोजे? जिसका अभी पीछे जिक्र हुआ है, एक तो जो है वो असा और दूसरा यदे बैजा। तो हमारी निशानियों के जोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरोकारों का होगा। तो अब आप देख लें कि अल्लाह ताला के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की इस मुलाकात और गुफ्तगू का हाल आप सूरत ताहा में पढ़ चुकी हैं, आयत नंबर 9 से लेकर 48 तक। और इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब पैगंबरी अता की तो इसके लिए कोई जश्न नहीं किया, कोई बाकायदा तकरीब का एहतमाम नहीं किया और के बड़े जो है वो जश्न करके और एहतमाम के साथ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी दी हो, बड़े ऐलान के साथ दी हो, नहीं, चुपके से नबुवत दे दी। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया तो अहले मक्का कहते थे कि हैरत है कि चुपके से आपको नबुवत कैसे मिल गई, एक तूरे सीना की सुनसान वादी में नबुवत का ये वाकया कैसे पेश आ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम खुद एक लम्हे पहले तक नहीं जानते थे कि उन्हें क्या चीज मिलने लगी है, मिलने वाली है। आग लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई। तो यहाँ पे यही इस सारे वाक्य से ये बात बताई जा रही है कि जब अल्लाह किसी बंदे से काम लेना चाहता है तो जो है वो जरूरी नहीं होता उसके लिए कोई लाओ लश्कर हो, कोई बड़ी ताकत हो और कोई बड़ी तकरीब हो, बस खामोशी से अल्लाह ताला जो है वो किसी को भी अपने काम के लिए चुन लेता है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 36 है, फलम्मा जाअहुम मूसा, फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुंचे, भी आयातीना, हमारी आयात को लेकर, बय्यनातिन, खुली खुली। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन लोगों के पास पहुंचे अल्लाह ताला की खुली खुली निशानियां लेकर, कालू, उन्होंने कहा, मा हाजा इल्ला सेहरुम मुफ्तरन, कि ये कुछ नहीं है मगर जो है वो सेहरुन जादू है, मुफ्तरन बनावटी, इस तरह होता है ना घड़ना, तो इस तरह जो है इसके मानी झूठ के भी हैं, इसके मानी बनावट के भी हैं। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के मोजजात को कहा ये तो बनावटी जादू है, यानी जैसे कोई चीज हाथ पर मल ली जाए तो वो हाथ चमकने लगता है, और इसी तरह जैसे लाठी जो अजदहा बन जाता है, तो ये भी हकीकत नहीं है बल्कि क्या है कि बस ये एक धोखा है। वमा समेना बिहाजा फी आबा इनल अव्वलीन, और ये बातें तो हमने अपने बाप दादा के जमाने से कभी सुनी ही नहीं थी। तो अब कौम के लोगों ने एक और इनकार क्या किया, कहने लगे कि हमारे बाप दादा ने ये बात जो है कभी कही नहीं थी जो कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो पेश कर रहे हैं। तो ये थी उनकी हठधर्मी की रीजन, ये था उनका जवाब। वकाल मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, रब्बी आलमु बिमन जा अबिल हुदा मिन इंदेही वमन तकून लहू आकिबतुद्दार इन्नहू ला युफ्लिहु ज़ालिमून, कि मेरा रब उस शख्स के हाल से खूब वाकिफ है जो इसकी तरफ से हदायत लेकर आया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो क्या जवाब देते हैं कि मेरा परवरदिगार इस शख्स को खूब जानता है, विमन जा बिल हुदा, जो सही दीन इसके पास से लेकर आया है, तमन तकून लहू आकिबतुद्दार, और वही बेहतर जानता है कि आखिरी अंजाम किसका अच्छा होना है। दार जो है ये घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्नहू ला युफ्लिहु ज़ालिमून, हक ये है कि जालिम लोग कभी फलाह नहीं पाया करते। यानी तुम मुझे जादूगर कह रहे हो। अब आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम को कौमे फिरौन ने जादूगर कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरैश के लोगों ने क्या कहा था, जादूगर कहा था ना। तो अब इन्होंने भी ईमान लाने की बजाय जो है वो पैगंबर का इनकार किया और क्या कहा कि ये जो निशानियां हैं ये भी जादू हैं। और यहां पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उन्हें समझा रहे हैं और उन्हें ये बात बता रहे हैं कि मेरा रब उस शख्स के हाल से खूब वाकिफ है जो इसकी तरफ से हदायत लेकर आया, यानी तुम कितना चाहे इनकार कर दो लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जो है खूब जानता है कि जो है मैं सही रास्ते पर हूं। तो उनका इनकार करना और मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं और ये जो मौजजे हैं ये मेरी सदाकत की निशानियां हैं, और यानी मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत नबी थे और नबूवत के बारे में कह रहे थे, और वो लोग क्या कर रहे थे, वो इनकार कर रहे थे। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आखिरी अंजाम अब किसका अच्छा होना है, तुम समझते हो कि तुम्हारा होगा, ये अल्लाह बेहतर जानता है, और हक ये है कि जालिम कभी फला नहीं पाया करते। तो फिरौन ने क्या किया, किबर और अनाद की वजह से जो है वो इनकार किया, मूसा अलैहिस्सलाम का भी और हारून अलैहिस्सलाम का भी। अब आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर ये नहीं कहा कि तुम लोग जहन्नमी हो, तुम लोग गुमराह हो, काफिर हो, बल्कि कहा कि अब अंजाम क्या होगा, अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि किसे जो है वो जन्नत मिलेगी और किसे जो है वो जहन्नुम मिलेगी। तो और आप देख लें कि तारीख ने इस बात को साबित कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को अल्लाह ने दुनिया में भी इज्जत दी और आखिरत में भी उनका अंजाम अच्छा होगा, और फिरौन और फिरौनियों के हिस्से में जिल्लत, रुसवाई और हिलाकत और बर्बादी आई। फकाला फिरौनु, और फिरौन ने कहा, या अय्युहल मलाउ, ए अहले दरबार, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, कि मैं अपने सिवा तुम्हारे किसी खुदा को नहीं जानता। फौकिद ली, फौकिद वकदा का मतलब होता है जलाना, फौकिद ली बस जलाओ, बस आग लगाओ ली मेरे लिए, या हामानू, ए हामान। और हामान जो था ये इसका फिरौन का वजीरे तामीरात था, कि मेरे लिए आग जो है वो लगाओ, जलाओ, अल्लतीनी मट्टी पर, फज अली सरहन, फिर मेरे लिए एक महल बनाओ, स्वाद रहा, ये ऐसी ऊंची इमारत को कहते हैं जो खूबसूरत हो और उस पर जो है नक्शो निगार बने हुए हो, खूबसूरत इमारत और नक्शो निगार बने हुए हो। आपने पीछे भी पढ़ा था ना, ये आयत नंबर 44 में सूरत अन्नमल में, قال انه سرح ممرد, तो सरहुन जो है ऐसी इमारत को जो नकायस से पाक हो, मुजयन हो, बुलंद हो और नक्शो निगार उस पर बने हुए हो। तो इसने भी कहा कि मेरे लिए एक ऊंची इमारत बनाओ, लअल्ली अत्तलिउ इला इलाही मूसा, ताकि मैं मूसा अलैहिस्सलाम का जो खुदा है, अत्तलिउ, मैं उस तक पहुंच सकूं, मैं चढ़ सकूं, मैं उन्हें देख सकूं, लाली शायद कि मैं अत्तलिउ, मैं चढ़ जाऊं, इला इलाही, इलाह की तरफ, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के। अब उसने क्या चाहा कि एक ऊंची इमारत बनवाए और ऊपर चढ़कर देखे कि वाकई खुदा मौजूद है, और कहा वह इन्नी ला अज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन, मैं तो इसे झूठा समझता हूं। अब आप देखें कि जैसे रूसी कम्युनिस्ट जो थे, इन्होंने भी स्पुतनिक और लूनिक ये गेंद थी, और इन्होंने ऊपर जाके खला में छोड़ी, और फिर इनका बयान आया कि हमारी इन गेंदों को ऊपर कहीं खुदा नहीं मिला। तो अब ये भी एक मीनार पर चढ़कर अल्लाह को देखना चाहता था, आज भी इंसान की यही जहनियत है और उस जमाने में भी यही जहनियत है कि ऊपर चढ़कर अल्लाह को झांकने की कोशिश करना, अल्लाह को देखने की कोशिश करना, तो ये क्या है, ये अल्लाह का मजाक उड़ाना है। तो इन्होंने भी ये बात कही फिरौन ने, और कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा समझता हूं, वस्तकबरा, और उसने जो है वो तकबुर किया हुआ, उसने व जुनूद हो, और उसके लश्करों ने फिल अर्द जमीन में, बगैर हक की, बगैर हक के। तो ये थी इसके इनकार की वजह, क्या, किब्र, कि उसने अपने आप को बड़ा समझा था, उसने बड़ाई का घुमंड किया था, और बुराई का हक किसको है, ये सिर्फ कायनात के रब अल्लाह ताला को है। बस तक बरा हुआ व जुनूद हो फिल अर्दी भी गैर हकी, फजन्नू अन्नहुम इलैना ला युरजाऊन, और वो समझे कि उन्हें कभी हमारी तरफ पलटना नहीं है, उन्हें यकीन था कि कभी अल्लाह की तरफ जो है वो पलटाए नहीं जाएंगे। तो आप गौर करें कि फिरौन ने और उसके लश्करों ने जो है वो जमीन में बगैर किसी हक के बड़ाई का घुमंड किया। तो आपके सामने जब अल्लाह का कलाम पेश किया जाता है, अल्लाह की आयात पेश की जाती हैं, तो आप क्या करती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप इख्तियारात इक्तदार को पाकर फिर घुमंड में मुब्तला हो जाती हैं, क्योंकि फिरौन जो है वो भी इक्तदार के नशे में जो है वो उसने खुदाई का दावा किया था ना, उसने वो मुतकब्बिर बन गया था। तो याद रखें किबर क्या है, कि अपने आप को बड़ा समझना और हक का इनकार करना। और जो कोई भी मुतकब्बिर बनता है तो अल्लाह की पकड़ में आता है, और अल्लाह ताला कहते हैं कि मुतकब्बिर जो है उसका अंजाम क्या होगा, यानी फिरौन कदीम मुशरिकाना तहजीब का इमाम था, मुशरिकाना तहजीब में फिरौन को ऊंचा मुकाम हासिल था, लेकिन उसके तकबर की वजह से, उसके शिर्क की वजह से ना सिर्फ मिस्र से बल्कि सारी दुनिया से उसकी तहजीब खत्म हो गई। अब दुनिया की आबादी में कौन लोग बचे हैं, या तो मुसलमान हैं या यहूदी हैं या ईसाई, और सब मुत्तफिका तौर पर फिरौन को लानत ज़दा समझते हैं। अब दुनिया में कोई भी फिरौन की अजमत को मानने वाला नहीं है, कोई भी उसका नाम भी नहीं रखता। तो याद रखे कि ये जो तकब्बुर है ना, ये किब्र जो है, ये बड़ी ही खौफनाक बीमारी है, और ये इंसान के अंदर पाई जाती है, शैतान के अंदर भी। ये सिर्फ जब पैदा हुई तो उसने आदम अलैहिस्सलाम को सज्दाए तज़ीमी करने से इनकार कर दिया, और इंसान जब जो है वो अल्लाह की आयात के आगे नहीं झुकता और अपनी गलती का इकरार नहीं करता, दूसरों के कसूर माफ नहीं करता, अल्लाह की आयात को अपने ऊपर नाफिज नहीं करता, तो उसकी असल वजह क्या है कि वो तकबर की बीमारी में मुब्तला होता है, जैसे कि फिरौन मुब्तला था। दूसरी वजह क्या होती है कि इंसान भूल जाता है कि मुझे मरना है, जिसको ये याद हो कि मुझे मरना है, हो नहीं सकता कि फिर वो अल्लाह की अताअत ना करे, क्योंकि जब पता है कि मरना है, अल्लाह के पास जाना है, तो बनेगा क्या। फाखज ना हु, अल्लाह ताला कहते हैं बस हमने उसको पकड़ लिया, फिरौन को व जनूदा हो उसके लश्करों को, फनबज ना हूं फिल यम्मी, और उनको समंदर में फेंक दिया। और अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने वो जो वक्त का बादशाह था, जिसने खुदाई का दावा किया था और जो अपने आप को बड़ा समझता था, तो अल्लाह ताला ने फिर उसकी कैसे पकड़ की ना, कैसा सख्त उसको जो है वो सख्त उसको सजा दी। फरमाया कि उसको भी और जो उसका साथ देने वाले थे उनको भी मैंने पकड़ा, और पकड़ कर जो है फिर उनको समंदर के अंदर जो है वो फेंक दिया। क्योंकि यहां पर यम जो है, याद रखिएगा कि पानी के बहुत बड़े जखीरे के लिए यम का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और नबाजा नून बा जाल इसका रूट है, किसी चीज को हकीर समझते हुए फेंक देना, किसी चीज की परवाह ना करते हुए उसको पसे पुश डाल देना। और वैसे तो फेंकने के लिए 6 लफ्ज आए हैं, रजम करना भी तो यही होता है ना, किंकर पत्थर फेंक कर किसी को हिला करना, रमी करना, इसके भी मानी क्या है कि किंकर पत्थर दूर फेंकना, दूर से फेंकना। और इसी तरह कजफ, कजफ का लफ्ज भी आप सूरत नूर में जो है वो पढ़ चुकी हैं, कजफ भी जो है जैसे रमी करना, कजफ मिलता जुलता इस्तेमाल होता है। तो हमने उनको हकीर समझकर समंदर की लहरों के सपुर्द कर दिया, फनजुर कैफ कान आकिबतु ज़ालिमीन, अब देख लो कि इन जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। वजअलनाहुम अइम्मतन यदउना इलन नार, वजअलनाहुम, और हमने उनको बना दिया अइम्मतन इमाम, दावत देने वाले, हमजा मीम मीम से है और इमाम के लिए इस्तेमाल होता है, कि हमने उनको लीड करने वाला बनाया, क्योंकि दुनिया में वो कुफर शिर्क गुनाहों के लीडर थे, तो अब हमने उनको जहन्नुम में भी लीडर बना दिया। यदउना इलन नार, कि वो जहन्नुम की तरफ जो है अब लोगों की रहनुमाई करेंगे। यौमल कयामत ला युनसरून, और कयामत के दिन उन्हें कहीं से मदद न मिल सकेगी। अल्लाह ताला ने उनका क्या अंजाम किया, आप देखें आयत नंबर 40 से सामने आ रहा है। नंबर 1, उनको पकड़ा, खूब सख्त गिरफ्त की। नंबर 2, समंदर की लहरों के सपोर्ट किया। नंबर 3, अब जहन्नुम की तरफ दावत देने वाले लीडर बन गए। नंबर 4, और कयामत के दिन इनको कहीं से मदद ना मिलेगी। नंबर 5, वह बा ना हूं फी हाजही दुनिया लाना, اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. لعنت کے معنی ہے کہ رحمت سے محروم کر دینا, قرض کرنا, رحمت سے محروم کر دینا, اور ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے. اور نمبر 6, فَيَوْمَ الْقِيَامَتِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ, اور قیامت کے دن وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. مقبوحین, قاف با حا, اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی حالت جسے دیکھنے سے انسان نفرت کرے, بدحال ہونا کسی کا, کسی کا, کسی کی گفتگو کا, کسی کی شکل کا, کسی کے عمل کا بدحال ہونا. مقبوحین, مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ وہ مردود ہوں گے. نمبر 2, اللہ کی رحمت سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے. نمبر 3, ان کی بری گت بنائی جائے گی. نمبر 4, ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. تو یہ تھے جو دنیا میں لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے تھے, اب جو ہے وہ قیامت کے دن بھی جو ہے وہ ان کو سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں سے, یہاں پر آ کر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے. اور آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے تحقیق موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی. کب؟ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد, جو ظلم کرنے والی نسلیں تھیں ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کتاب عطا کی, تورات عطا کی, بصائر للناس, لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر. اب یہاں پہ تورات کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں, بصائر للناس, لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر, ورحمتن اور رحم, وحدن اور ہدایت, دوسری صفت ہے وحدن اور ہدایت, اور تیسری ورحمتن اور رحمت بنا کر, لعلہم یتذکرون, شاید کے لوگ جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں. تو یہ جو پچھلی نسلیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا, یہ کون سی تھی؟ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا. تو جو انجام پچھلی نسلوں کا ہوا وہی فرعون اور اس کے لشکروں کا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کیوں عطا کی؟ تاکہ ایک نئے دور کی ابتدا ہو, تاکہ جو ہے وہ ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو, انسانیت کا ایک نیا دور شروع ہو. تو یہاں پر جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کتاب دی گئی, اور رسول بنا کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی گئی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسانیت کا ایک نیا دور شروع ہو. اور قرآن مجید کے بھی یہی اوصاف کہ بصائر للناس وہدا ورحمت لعلہم یتذکرون, تاکہ لوگ جو ہے قرآن سے ہدایت, رحمت, نصیحت جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو یہ تھا ہمارا سبق جو آیت نمبر 22 سے لے کر 43 تک, اور اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ عمل کے کیا اصول نکلتے ہیں. اس میں پہلی بات تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جو ہے وہ اپنے زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینی چاہیے, یہ دعا مانگنی چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی, یہدی یعنی سوا السبیل. تو کیا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہیں کہ وہ مجھے جو ہے وہ ٹھیک راستے پر ڈال دے؟ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں, تو اے اللہ تو مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے, یہ دعا مانگنی چاہیے. دوسری بات, بحثیت ایک عورت کے, ایک لڑکی کے, کیا آپ کے اندر حیا پائی جاتی ہے؟ اگر آپ یعنی آپ شوقیہ باہر نکلتی ہیں یا ضرورت کے مطابق نکلتی ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں, اپنا جائزہ لیں, اور پھر آپ اپنا لباس, اپنا گفتار, کردار, اپنا معاملہ کیسا رکھتی ہیں. क्या आप जो हैं वो कोशिश करती हैं कि जब जरूरत के वक्त और मजबूरी के वक्त आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, आप जॉब करने जा रही हैं या आप डॉक्टर के पास जा रही हैं या आप शॉपिंग के लिए जा रही हैं, किसी भी मकसद के लिए आप बाहर निकली हैं, तो मिन दू नहीं, अलग थलग, यानी मर्दों से अलग थलग होकर आप कोशिश करती हैं कि खड़ी हो। और फिर ये कि जो चलना है तो उसमें भी तमशी अलस्ते हया, तो शर्मो हया जो है उसका पैकर बनती हैं, क्योंकि हया जो है ये औरत का जो है वो जेवर है। और ये दूसरी अहम बात है कि आप जो है वो कितनी बाहया है, और इसका मतलब है कि बैशफुल, यानी हया के मानी क्या है कि अल्लाह ताला जो बातें हमारे लिए पसंद करते हैं तो वो सिफात अपने अंदर जो है वो पैदा की जाए। फिर इसके बाद तीसरी चीज है कि जब आप किसी से कोई लेन देन का मामला करती हैं तो क्या आप जो है कोई एग्रीमेंट करती हैं। नंबर चार, क्या आपके पास जो इमानते हैं तो आप कवीउल अमीन के ऊपर पूरा उतरती हैं, कवीउल अमीन, या जब दूसरे को आप लेती हैं तो भी कवीउल अमीन का ख्याल रखते हुए। फिर इसी तरह जो है वो इसी में अहम बात ये है कि जो जब डीलिंग हो तो किसी को तंग ना किया जाए। और ये दुआ जरूर आप याद कर लें कि रब इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, कि कल कोई जरूरत हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, औरों को भी आप बताएं, बहुत ही अच्छी बात है। और फिर इसी तरह जो है यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि अकेले की बजाय अपने साथ और लोगों को मिलाना चाहिए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे हारून अलैहिस्सलाम आप दे दीजिए, तो हमें भी अल्लाह के दीन के काम के लिए दुआ करनी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने हजरत उमर बिन खताब के लिए दुआ की थी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की थी। और मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको नेकियां फैलाने वाला बनाए और इस काम में हम सबको जो है वो मिलाए और इकट्ठा करे। और आप जरूर सोचें और फैसला करें कि मैं अपनी कुव्वतों, सलाहियतों, जवानी, दौलत, वक्त, अपने टाइमिंग, अपनी डिग्री, अपनी जो तालीम है, इसके मुताबिक मैं क्या दीन की खिदमत कर सकती हूँ। और फिर आप दीन इस्लाम को फिर आप मजबूत करें, क्योंकि आज दीन इस्लाम जख्मी जख्मी है, आज दीन इस्लाम कमजोर है। और दीन इस्लाम ऐसे लोगों के सपोर्ट किया हुआ है जो सही तरह बात भी नहीं कर सकते, एजुकेटेड लोग नहीं है, बहसियत है मजमुई में कह रही हूँ, यानी कहीं कहीं तो बहुत अच्छे तरीके से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे या कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले आमतौर पर लोग जिन्हें जो है वो समझ नहीं है, अगर जस्ट नाजरा पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कुरान के अंदर क्या है, अहकाम क्या है, हाफिज भी हैं तो भी पता नहीं कुरान के अंदर क्या है, तो जिसका नतीजा क्या है कि वो दीन की सही नुमाइंदगी नहीं कर पाते। और बल्कि मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे आपके घर के दरवाजे के बाहर BMW खड़ी है, तो अब आप देखेंगे गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी तो एक सलाहियत की जरूरत है ना, समझदारी की जरूरत है, ताकि उसको एक स्पीड के साथ एक अच्छे तरीके से चलाया जाए। और अगर ऐसे ही किसी निकम्मे के हाथ में उसको दे देंगे तो क्या करेगा, वो एक्सीडेंट करेगा ना। तो इसी तरह कुरान बड़ा खूबसूरत है, दीन बहुत अच्छा है, जिसके अंदर खैर ही खैर है, लेकिन अब कौन से लोग हैं जो इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या सही नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या इस्लाम की रूह को सही तरीके से पेश कर रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इधर उधर की तू बात ना कर ये बता के काफिला क्यों लुटा, इधर उधर की तू बात ना कर ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों की खबर नहीं तेरी राहबरी का सवाल है। तो आपको क्या करना है, आपको फैसला करना है और सोचना है कि मैं किस तरह से जो है वो मेरी जितनी बाकी जिंदगी है, मेरे पास जो भी औकात है, जो सलाहियतें हैं, जो दौलत है, जो वक्त है, जो मेरी तालीम और एजुकेशन है, मैं उसको किस तरह दीन इस्लाम की जो है वो खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, ये आपको इंशाल्लाह सोचना है। और फिर इसके साथ ही जैसे फिरौन ने कहा था अपने वजीर तामीरात को कि एक ऊंची बिल्डिंग बना ताकि मैं मूसा के रब को देख सकूं, तो आज के दौर में भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह का अल्लाह के रसूल का और कुरान की आयात का मजाक उड़ाते हैं। तो आपने सोचना है कि कैसे उन इतराजात और मजाक जो है उसका जवाब देना है। फिर आप अपना मुहासबा करें कि, और बहुत ही संजीदगी से करें कि क्या कहीं आपके अंदर किबर तो नहीं पाया जाता, और इस पे भी सोचे कि अल्लाह जो है मुतकब्बरीन के साथ जो है वो कैसा मुआमला करता है। अल्लाह ताला जो मुतकब्बरीन है इनको पकड़ता है तो फिर कैसा पकड़ता है कि जिसके दिल में जर्रा बराबर किब्र होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो एक शख्स जो अपने आप को बड़ा समझता है तो असल में सबसे बड़ा कौन है? वो अल्लाह ही है। तो वो क्या करता है जो अपने आप को बड़ा समझता है? होता वो मामूली है, हकीर है, जो जो है वो अल्लाह की तालीमात का जो है वो इनकार करता है। तो अल्लाह ताला को तो आजी पसंद है, इंकसारी पसंद है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने वाला बनाए, आपसे और मुझसे राजी हो जाए, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हमसे वो काम ले ले जो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों से लिया था। और हम जब पैगम्बरों का काम करने चले हैं तो हम अपने अल्लाह से अपने दामन को फैलाकर अपने हाथों को उठाकर भी ये दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तू हमें अपने पैगम्बरों का उस्वा दे दे। मिशन हम वो अदा कर रहे हैं तो ऐ अल्लाह तू हमें जो है वो मिशन को अदा करने के लिए किरदार भी दे दे। और चलते चलते मैं ये बात भी कहती चलूं कि ये जो पैगंबरी का काम है, ये जो दावा का काम है, ये सिर्फ तकरीर से नहीं होता, इसके लिए खिदमत भी जरूरी है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने, मुसाफिर थे, जानते भी नहीं थे, और दो औरतें जो थी उनके जानवरों को पानी पिलाया, तो क्या क्या खिदमत की ना, और कोई उजर नहीं, उजरत नहीं, कोई मुआवजा नहीं। तो आज हम क्या करते हैं, तकरीर तो करते हैं पर खिदमत नहीं करते। बीमार हैं लोग, परेशान हाल हैं और मसाइल में हैं, जरूरतमंद है, हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि किसी की आदत कर लें, किसी की ताजियत कर लें, किसी की जो मुश्किल है तो उसमें उसके हल करने में उसकी कोई मदद कर दें। तो याद रखें कि दावा जो है तब असर करता है जब खिदमत से लोगों के दिलों में जगह बनाई जाती है, तो फिर तकरीर जो है फिर उस पर जो है वो असर करती है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।